थी। तो आप ये समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप या ये करप्शन, इसको आप नहीं कह सकते, हमारे मुल्क में रिश्वत होती है, यहाँ पे पुल्स होती है, हमारे मुल्क में सिफारिश होती है, यहाँ अगेन पुल्स का नाम दिया जाता है। तो दिस इज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। और पॉलिटिशियंस, इनके बच्चे अगर आला स्कूलों में जाते हैं, आला तालीम हासिल कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज में जा रहे हैं, फ्रॉम वेयर दिस मनी कम्स? बाज़ुकात हो सकता है लॉबियस्ट भी उनको हुकूमत पैसा देते हो। तो सेम इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट भी चाहती है कि अमेरिकन आर्मी शुड टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स, आप देख लीजिएगा, दे वांट अमेरिकन्स टू बी यूज्ड टू कि अगर आपको गार्ड्स वर्जीनिया में नजर आ रहे हैं, अगर आप वाशिंगटन डीसी में नजर आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ जगहों में आ रहे हैं, तो इट शुड बी अ नॉर्म फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जी अशर अजीम साहब, आप कैरी ऑन कीजिएगा। आपने कहा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में अगर औरतों के ऊपर ज्यादती हुई तो जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी। बेसिकली दिस पनिशमेंट वॉज फॉर अ वुमन विच वॉज हु वॉज बेनजीर साहिबा। सारे बच्चे उनके जेल के दौरान पैदा हुए और इन्होंने टॉर्चर भी लिया। जियाउल हक के दौर में एक पार्टी जिसको कोड़े भी मारे गए, दैट वॉज पीपल्स पार्टी। मगर पाकिस्तान की तारीख में हर पार्टी को लाने वाले कौन थे? वो जिन्होंने कुर्बानियां भी दी। और पॉलिटिशियंस, दे मेड मनी, दे डेफिनेटली मेड मनी अब तक। जी सर, क्या वजह है कि आपने आप अपनी लॉसेस का जिक्र नहीं करते, जहां पे आपने अपनी बलूचिस्तान में जमीन आपसे ले ली गई, या योर कंट्री इज नंबर वन देन योर पर्सनल एसेट्स?
देखिए, एक एक प्रोसेस है ना, मतलब अब अगर मेरी लैंड गई है तो मैं, मुझे चाहिए फिर कि एंड इफ आई एम दैट कंसर्न्ड, तो मैं जाऊं वापस, मैं वहां पे जाके उसके लिए खड़ा हूं, किसी कोर्ट सिस्टम में जाऊं, कोई कुछ करूं, कोई वो लड़ूं। लेकिन अगर मैंने वो कुछ नहीं करना और मैं हर दूसरी बात पे किसी और इशू पे अपना बोझ निकालता रहा करूं, आई थिंक दिस इज नो वे। आई मीन, वन शुड बी फोकस्ड योर कॉन्वर्सेशन। देखिए, अगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और उसकी पॉलिटिक्स की, और मैं इस वक्त आपको समझाना शुरू कर दूं कि जी जो सैटर्न का 12वां चांद है या 8वां चांद है, उस पे क्या हो रहा है, तो आई वुड बी कंप्लीटली डीरेंज्ड पर्सन, यू नो, आई कांट फोकस ऑन व्हाट इज द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। सो एवरीथिंग हैज टू बी टैकल्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड किस चीज पे इस वक्त बात हो रही है, मेरी जमीन का इशू है, तो वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दैट सेपरेटली। बट ये थोड़ी है कि अब अगर पाकिस्तान की जंग हो रही है तो मेरी चूंकि जमीन एक दफा किसी ने ले ली थी, या फौज ने वहां पे जमीनों पे नहीं बनाने दे रही थी और मुझे आज तक नहीं मिली, या मलिक रियाज से मेरी कोई जाती दुश्मनी हो गई है क्योंकि मेरा प्लॉट गुम गया है और मैं अभी उसको बददुआएं दूंगा, और फलाना, आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट टाइप। दैट्स अ सेपरेट इशू, दैट्स अ डिस्कशन, व्हेन वी विल टॉक अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट।
ये जो पोलराइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन, यानी जाहिर है जिसमें कुछ लोग तो इंतहा पसंद, यहां तक भी कहते हैं कि इट्स फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन वॉरफेयर्स की जरूरत है, वी डोंट नीड आर्मी। हालांकि आर्मी इज एन एसेट अमेरिका को, किस सारी दुनिया इसके रोब के तले है, मगर सबसे बड़ी आर्मी अमेरिका की है। वी आर विदाउट आर्मी, वी आर नोवेयर। एंड एक्सटेंशन की जब बात करते हैं तो पॉलिटिशियंस ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज, आपके जर्नलिस्ट ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट?
देखिए, थोड़ा सा जो 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 मैंने एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सियल बात की कि, और मैं खुद इस बारे में बहुत सोचा, जो मैं इतना आर्डेंट बिलीवर था कि जी फौज को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, और अब मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में फौज को पॉलिटिक्स में होना चाहिए थोड़ा बहुत, और इंटरनेशनली, मतलब ये देखिए उसकी एक वजह है। आप ये देखें कि दूसरी जंग अजीम में, पहली जंग अजीम में, वियतनाम में, इराक में, अफगानिस्तान में कौन मरा, अमेरिका के लिए अभी हम बात कर लेते हैं, वही मैंने कहा ना, एक थर्ड कंट्री की बात करते हैं तो हमें बात समझ में आएगी। कौन मरा? गरीब का बच्चा, क्योंकि फौज में कौन जाता है, अमेरिकी फौज में कौन जाता है? गरीब का बच्चा। तो वो तो मरे, उनके भाई भी मरे, वो खुद भी मरे, बहुत से के बाप मरे, اچھا نہ امیر آدمی فوج میں گیا نہ اس نے جنگ عظیمیں لڑی، یہ اس وقت بھی ڈوج کرتے تھے ڈرافٹ کو، جو فوجیوں کو ریکروٹ کیا جاتا تھا، لے جایا جاتا تھا، ویتنام نہیں گئے، کہیں نہیں گئے. جب اس ملک کا فائدہ لینے کی بات آتی ہے تو تب تو یہ لوگ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور ان کے بچے یہ اس کی پالیٹکس میں آتے ہیں. اور ان فوجیوں کو جنہوں نے یہ ساری قربانیاں دیں، جو لڑے، جو کہ مورچوں میں رہے، جنہوں نے سب کچھ گزارا، ان کو کہتے ہیں نہیں تم چپ رہو، تم خبردار، تم اس ملک کے بارے میں کچھ بولے. اب تو اور اگر آپ پالیٹکس کو دیکھیں تو اگر آپ بہت امیر آدمی نہیں تھے تو آپ صدر نہیں بن سکتے. پاکستان میں آ جائیں وزیر اعظم، آپ غریب آدمی کو پاکستان میں وزیر اعظم بن کے دکھا دے، مجھے صدر بن کے دکھا دے، اور چھوڑے ایم پی اے بن کے دکھا دے. اور فوج میں غریب کا بچہ چیف آف دی آرمی اسٹاف تک بن سکتا ہے. بہت ناجائز کرتی ہوگی، بڑا ظلم کرتی ہوگی، بڑا فلانا کرتی ہوگی، میں سب مانتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں سیاست سے کم از کم زیادہ میرٹ ہمیں یہیں پہ نظر آ رہا. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کون سا جرنیل ایسا ہے جو کہ جرنیل ہی کا بیٹا تھا؟ نہیں تھا نا،
آصم ملک.
ہاں جی، لیکن کیا آصم منیر کسی جرنیل کا بیٹا ہے؟ کیا کسی سیاستدان کا بیٹا ہے؟ کیا کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا ہے؟ ایون سول سروسز میں زیادہ میرٹ ہے بنسبت سیاست کے، فوج میں زیادہ میرٹ ہے بنسبت سیاست کے. آپ اور اگر آپ ایم پی ایز، ایم این ایز اور وزیر اعظم اور بڑے بڑے وزیر دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خاندانی جدی پشتی زمینوں والے، جائیدادوں والے، پیر فقیر وڈیرے. سو جو غریب آدمی کا بچہ ہے، جو ایکچولی لڑتا ہے آگے، وہ سیاست میں نہ بولے. کیوں نہ بولے؟ امریکہ میں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، یو ایس ایس لبرٹی ایک جہاز تھا جس پہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور وہ جہاز ڈبونے کی کوشش کی تھی، اس لیے کیونکہ اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ اس وقت جنگ میں شامل ہو جائے. ایک بڑی مشہور بات. اور پولیٹیشنز خاموش ہو گئے تھے کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے فوجی مرتے ہیں تو مرنے دیں، کیونکہ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ وہ اے پیک سے سارے پیسے لیتے ہیں. سو جس کا خون بہتا ہے وہ چپ رہے. باقی ہم سب جو ہیں، ہم سیاست یقیناً کریں گے، ہم بہت مامے لگتے ہیں ملک کے. سو وائی از دیٹ؟
ایک اور سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، آئی انڈرسٹینڈ، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک طالبان سے مشورہ کرنا اور پھر ایک نیا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ ان دس، آپ نے بڑے پیارے طریقے سے بات کی، میرا خیال آئی شوڈ ناٹ ڈائیورٹ ہر انسان سے، میں صرف اتنا کہتی ہوں تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ دس از انٹرنیشنلی. انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں، بہت سے لوگ یہاں سے جب مثالیں دیا کرتے ہوتے جی وہ جی سجے ہوئے ان کے اتنے بیج لگا کے آ جاتے ہیں کیا کچھ بھی نہیں، اس کو آپ کیسے میں لوگوں کو کہوں گے، مطلب اتنے نفرت سے مت بھرے ہوئے ہوں کہ جتنا گھر ہمارا خوبصورت ہے کمر منہ کھلتا ہے اور کہ بھئی اتنے بلے لگا کے آ جاتے ہیں کیا ضرورت ہے، انڈیا کے جنرلز کے نام نہیں ہمیں پتا، امریکہ کے اب پتہ لگ جائیں گے آپ کو امریکہ کے سارے جنرلوں کے نام. ہاؤ وڈ یو ایلیبریٹ؟
دیکھیں، لاٹ آف اٹ از آلسو کریکٹ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی اٹ از ناٹ کریکٹ. بات یہ ہے کہ آپ کو ایک سمپل لائف سٹائل ہونا چاہیے نا، ایران کی بھی ایک فوج ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں کم از کم یہ نہیں جسٹیفائی کر رہا کہ جی آپ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھیں، آپ سول سروسز کی ساری جابز لیں، آپ یہ سارے کریں. میرا یہ ماننا ہے، اور جو میرا فوج پہ آج بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے اور جو پہلے بھی اعتراض تھا، کہ یار دیکھیں اگر اس ملک میں جو سیولین وزیر اعظم ہوتا ہے نا جی، جو سول وزیر اعظم ہوتا ہے، اس نے اگر ملک میں کوئی چینجز کرنی ہے تو اس کو بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اس نے ایم این ایز کو بھی منانا ہے قانون پاس کرنے کے لیے، سینیٹرز کو بھی منانا ہے فلانا. فار ہم لائف از ڈیفیکلٹ، اور پھر اس کا ایک چھوٹا سا ٹینیور ہے، اور پاکستان میں کسی سیولین نے ایک پرٹیکولر ٹائم پورا نہیں کیا، بہت مشکل سے زرداری صاحب نے پہلی دفعہ پورے 5 سال مکمل کیے تھے. ہمارے فوج ہمیشہ پیچھے سے سازشیں کرتی رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اس بات کو جسٹیفائی کروں, اور آج بھی نہیں کر رہا. میرا یہ کہنا ہے کہ فوج کا پالیٹکس میں رول ہونا چاہیے, لیکن اس کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالنا چاہیے. یہ جو روز فوج گند مچاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور تو میرا جو اعتراض تھا فوج سے کہ بھیا جب آپ نے ڈائریکٹلی اتنے سال حکومت کی اور آپ پہ یہ پولیٹیکل پریشرز نہیں ہوتے, آپ تو ظاہر ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, تو اگر آپ یہ کر سکتے تھے تو آپ نے ملک میں ریفارمز کیوں نہیں کی؟ دس از مائی بیسک پرابلم. ٹھیک ہے جی, تو آپ تھوڑا لے کے آ گئے نا. کیونکہ دیکھیں, میں میرا یہ ماننا ہے, سول سروسز میں ہم ایک دفعہ وہ لکھ رہے تھے, ایسے لکھ رہے تھے کہ جی پاکستان کے ایشوز کیا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو تبدیل کرنا ہے تو یہ شروع, تو اس کی ایک میں نے مثال دی تھی. میں نے کہا جی اگر آپ جمہور جو ہے نا وہ ایک باغ کی طرح ہے جس میں پھلدار درخت لگتے ہیں, تو ان درختوں کے سائے میں بھی آپ رہتے ہیں اور پھر اس درخت کا آپ پھل بھی کھاتے ہیں ان درختوں کا. اب جو باغ ہوتے ہیں نا وہ سنگلاخ چٹانوں میں نہیں بنے ہوتے, وہ اس کے لیے ایک فلیٹ ہموار نرم زمین ہوتی ہے. پاکستان کا اگر آپ لینڈسکیپ دیکھیں تو وہ جب سے پاکستان بنا ہے اینڈ ایون بفور, جب پاکستان بننے سے پہلے بھی, یہ ایک سنگلاخ چٹانے ہیں. اس پہ جمہور نہیں اگا کرتی, وہ اس طرح سنگلاخ چٹانے ہیں کہ آپ کے اس پہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا پیر اور وڈیرا ہے, یہ الیکشن اس لیے جیتتا ہے, اس کے پاس زمین بہت زیادہ ہے, یہ انڈسٹریلسٹ بہت بڑا ہے, اس کے پاس شوگر ملنے بہت زیادہ ہیں, یہ بڑا بدماش ہے. تو آپ اس طرح, آپ کی یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, اس میں ایسی جمہوریت نہیں آتی. آپ کے لینڈ ریفارمز ہوں, جب تک چند لوگوں کے ہاتھ میں باقی کی کامرس ہے اور انسان برابر نہیں ہے, تو ظاہر ہے ون مین ون ووٹ یا کسی شخص کے ووٹ کی عزت نہیں ہوگی. تو پہلی سٹیج میں اگر آپ نے باغ لگانا ہوتا ہے نا تو آپ کو زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ڈائنامائٹ بھی آتا ہے چٹانے اڑانے کے لیے, اس کے لیے بلڈوزرز بھی آئیں گے یہ سارے پتھر ہٹانے کے لیے, اس کے لیے ٹریکٹر بھی آئیں گے جو زمین چیرے گا, اور آپ کی ایک دفعہ وہ ہموار زمین ہوگی, اس میں پھر آپ بیج لگائیں گے درختوں کے, اور پھر آپ اس کو 10 سال بیٹھ کے گارڈ کریں گے کہ وہ درخت اگیں گے, اور پھر اس جمہور کو سب انجوائے کریں گے. اب دس از اے پروسیس آف فورس. ناؤ دس, اف یو ایکسپیکٹ کہ یہ جی 50 سال میں دھیرے دھیرے ووٹ پڑتے رہیں گے, کیونکہ ہر ڈبے میں جا کے آپ 5 سال بعد کچھ لوگ کاغذ ڈال دیا کریں گے تو اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہ 5000 سال بھی کرتے رہے, کاغذ میں ڈبے ڈال کریں, ڈبے میں کاغذ ڈال,
فائبر ویک ہے, نورل فائبر ویک ہے.
سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جی دا پرابلم از, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بلے لگا کے آ جاتے ہیں, وہ ٹھیک بھی کہتے ہیں کہ بھیا آپ کیوں ہو, لیکن آپ کو رول آف لا لانا پڑے گا. اچھا لوگ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ رول آف لا کا سب سے بڑا امپیڈیمنٹ یہ ہے, ٹھیک ہے جی فوج ہے, اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ پولیس کا محکمہ ہو گیا, کسٹم کا محکمہ ہو گیا, اور میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کیا, گراف بنا کے چارٹ بنا کے کہ بھیا یہ کیسے ورکس. آل دس از اے فیکٹ, رائٹ. Now, how are we going to solve this? How we are going to solve this is by your politician refusing to be a party with them. آپ کے خیال میں فوج خان صاحب کو کیوں لے کے آئی تھی؟ وہ اس لیے لے کے آئی تھی کیونکہ ان دو پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اب ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. فوج آپ کو دوسرے کے خلاف پلے کرتی ہے, تو دے ہیڈ ٹو برنگ ان اے تھرڈ فورس. خان صاحب شوڈ ناٹ ہیو کوآپریٹڈ. کیا خان صاحب کو پتا نہیں تھا کہ یہ فوج اس طرح ہے؟ کیا یہ فوج نے 2013 کے بعد سے یا 18 کے بعد سے یہ کرنا شروع کیا؟ یہ جتنی باتیں ہیں کہ بلے لگا کے آ جاتے ہیں یہ فلانا, میں یہ سب مانتا ہوں, یہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن کیا یہ جب آپ کی طرف ہوتی ہیں تو تب یہ ٹھیک ہوتی ہیں, اور جب یہ دوسرے کی طرف ہوتی ہیں تو تب ٹھیک نہیں ہوتی؟ وٹ ڈز دیٹ مین؟ اگر آج بھی خان صاحب جیل میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی میں فوج سے بات کروں گا, تو وٹ ڈز دیٹ مین؟
अनदर थिंग इज के जब वो ये कहते हैं ना कि मतलब ये सारे करप्ट में डील नहीं करना चाहता, पूरी दुनिया के आप मैप उठा के देख लें, गवर्नमेंट इज ऑलवेज स्ट्रेंथन्ड बाय द ऑपोजिशन। कौन सा मुल्क है जहां ऑपोजिशन नहीं है? Either you have to sit on the opposition side or you have to have the opposition in front of you. आपके जमाने में आप क्विकली सर इसको भी कवर कर दीजिएगा कि जुडिशरी आपकी अपनी थी, सारी लॉ इन्फोर्समेंट वाले, हर गवर्नमेंट ने यही कुछ किया, हर गवर्नमेंट प्लान करके बैठती है कि अगले 10 साल तो मैंने कहीं से हिलना ही नहीं। सो एवरीबडी इज करप्ट इन द सिस्टम, एवरीबडी इज करप्ट इन द सिस्टम।
आपके सबसे लाडले थे, आपके जो सबसे लाडले थे आपके फैज अमीन साहब थे ना, आई मीन लुक एट द कैरेक्टर ऑफ दैट मैन,
लुक एट द बाजवा साहब,
देखें उसके आप फलाने देखें। और आप बातें कर रहे हैं करप्शन की, आपके पास अगर लोग लेके आए थे एक जनरल को, मैं नहीं कहना चाहते जनरल आसिम बाजवा की बात है, मैं ये नहीं कहता कि वो क्या था जो भी, लेकिन जब उनका सारा ये जो पिज्जा वाला इशू आपके सामने आया तो आपने बहसियत वजीर आजम इंक्वायरी करना भी पसंद नहीं की। आपने कहा जी मैंने देख लिया था,
पापा जोन्स पिज्जा की बात करते हैं, यानी उनके तो पिज्जा स्टोर चल रहे हैं, तब आपने व्हाइल यू वर इन द फोर्स व्हाई यू डिड नॉट टेक एन एक्शन। मेरा सर आखिरी क्वेश्चन है बिकॉज टाइम कंस्ट्रेन एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट, आज आपका बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई इफ आर्मी थिंक्स दे हैव नॉट डिलीवर्ड the why not they spring in martial law, why it is that, because logon ke darmiyan mein bham aa raha hai ki aaj ISPR ja ke wo clarify karta hai to wo log haklahat ko mehsoos karte hain, us stammering ko mehsoos karte hain ki ji jhooth bol rahe hain, so if you are promoting lies wo logon mein double jhooth bolne ki ya 10 guna jhooth bolne ki satat paida karega, why don't they come and straight forward aake apni baat kyun nahi karte?
मैं नहीं समझा आपका सवाल क्या
मिसाल के तौर पे ISPR ने कहा अगर तालिबान के साथ मुतालिबात किए थे या उनको लेकर के आए थे तो बाजवा साहब वॉज एट द फ्रंट, फैज अमीन वॉज एट द फ्रंट, सो रादर देन ओनली पुटिंग वन पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट दे कुड हैव एक्नॉलेज्ड कि यस उस वक्त की आर्मी भी साथ शामिल थी एंड इट वॉज अ ग्रेव मिस्टेक।
देखिए ये तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो खान साहब खुद कह चुके हैं कि जी आर्मी वो होती है जो उनका चीफ होता है। ठीक है, एक कोर कमांडर के साथ एक प्रोसेस है कि जिसके साथ वो बैठ के एग्री करते हैं, बट आर्मी उस तरह जमहूरी प्रोसेस नहीं है कि जी। तो अगर फौज को उस वक्त ऊपर से उनके जो फैज अमीद साहब और बाजवा साहब का जो ऑर्डर मिल रहा था तो उन्होंने तो वो करना था, ठीक है, उनमें इस तरह का थोड़ी है कि जी सारे बैठ के चिरगा करेंगे और अग्री करेंगे और फलाना करेंगे। एंड तो वही वाली बात है ना कि जी जो आपके साथ खड़ा होके जो मर्जी करता रहे, मतलब आप ये देखें कि आप सारी उम्र ये नारा लगाते रहे कि जी मैं चोरों को पकड़ने आया, ठीक है जी, और रसीदा कड्डो आप दूसरों को कहते हैं, तो जब आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडओवर करती है 190 मिलियन पाउंड कि ये पैसा सीड्स ऑफ क्राइम है, मैं इस पर अभी जाते ही नहीं हूं कि वो आपकी क्या वजह थी, आपने उसमें कोई आपका गलत इंसेंटिव था या फलाना, मैं कहता हूं कि नहीं आपका नहीं था, बिल्कुल मासूम आदमी,
बिल्कुल मासूम थे, आपके पास रसीद होनी चाहिए थी फिर भी।
तो आपको ये उस आदमी से पूछना नहीं चाहिए था कि भैया ये 190 मिलियन पाउंड जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं ये तेरे पास कहां से आए, आपको इंक्वायरी नहीं करवानी चाहिए थी? या जिस जो आपका दोस्त है वो तो 190 मिलियन पाउंड आपको भले कागज में हैंड ओवर हुआ और आप बंद लिफाफे पे साइन करके उसको तो ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरों की बारी आपको फौरन हर किस्म का असूल कानून तो रसीदा कड्डो याद आ जाता। So this hypocrisy cannot work.
We are full of hypocrisy, and that's what people say that our moral fiber is weak because we just go with the parties. We do not go with the country. Sir, आपका बहुत शुक्रिया for being with us. Quick one minute message to the people.
Treat जिंदगी में हर चीज को डेटा की तरह treat किया कीजिए और उसको प्रोसेस किया कीजिए और फिर उसको आगे चलाया करें। जज्बाती होके पहले से जहन में फैसला नहीं कर लिया करें कि ये मुझे पता है ये कहेगा और फिर वो आपने बड़ा मशहूर लतीफा सुना होगा ना, वो कहते हैं कि एक साहब थे वो खड़े थे कहीं सड़क पे, تو ایک نوجوان ان کے پاس تھا, تو نوجوان نے پوچھا انکل سے کہ انکل ٹائم کیا ہوا ہے. تو انکل نے اپنی گھڑی کی طرف یوں دیکھا اور پھر اس لڑکے کی طرف غصے سے دیکھا اور نہیں بولے, کچھ نہیں بولے. اس نے حیرت ہوئی کہ کیوں بتاتے نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا انکل ٹائم کیا ہوا ہے. انکل نے پھر بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا, کچھ نہیں بولے. وہ دوسری تیسری اس نے کہا انکل آخر بتا کیوں نہیں دیتے کہ ٹائم کیا ہوا ہے. دونوں نے کہا کہ بھیا بات یہ ہے کہ تمہارے پاس, تم ایک ایسے شخص ہو جس کے پاس گھڑی بھی نہیں اور تم مجھ سے کانورسیشن بڑھانا چاہتے ہو, کیونکہ میں جب تمہیں ٹائم بتاؤں گا تو اس کے نتیجے میں پھر اب تم مجھے کوئی اور بات کرو گے, پھر پوچھو گے میں کہاں رہتا ہوں, پھر تم آنا جانا شروع کرو گے, سلام دعا شروع کرو گے, اور پھر چونکہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے تو تم اس سے رشتہ کرنا چاہو گے, ٹھیک ہے جی. اور میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جس کے پاس گھڑی بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اس لیے میں تمہیں ٹائم نہیں بتاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ جذباتی لوگ جو پری کنسیو نوشن سے آ جاتے ہیں وہ اس طرح کے خڑوس انکل ہوتے ہیں جو کہ زندگی کو اس وقت ڈیٹا کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. بھیا آپ سے سمپل یہ سوال ہے, ٹائم کیا ہوا؟
بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ. جناب اشرف عظیم صاحب اپنی ایک کتاب لکھ رہے ہیں, اگلے پروگرام میں اس کتاب کے بارے میں بھی ذکر کریں گے. آج انہوں نے بہت بڑی بات کی, آپ کو تصویر دکھائی محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی, واقعی اس تصویر کو آپ دیکھیے گا, یہ صرف آنکھ والوں کو وہ کرب نظر آئے گا, سوچ کے دیکھیے گا. ابھی اجازت دیجیے سر, آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس.
تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو.
ایشین فوڈ سینٹر دیاں ساریاں ہی لوکیشن سے 6 اکتوبر تو 17 اکتوبر تک کروا چوتھ سیل لگ چکی ہے. کروا چوتھ تھالی, مہندی, مٹھائیاں, مٹھے, ورائٹی آف بینگلز, سہاگ اینڈ پوجا آئٹمس, بہت سارے ان سٹور سپیشلز بھی. تاج آٹا 11.99 ایچ, 10 پاؤنڈ انڈیا گیٹ روزانہ رائس 11.99, 2 پاؤنڈ واگ بکری ٹی 10.99. یاد رکھو ایشین فوڈ سینٹر تے کروا چوتھ 6 اکتوبر تو 17 اکتوبر تک. کال ایٹ 416-740-3262.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ.
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828.
Get ready Toronto, Vatano Dur, Rais Farooqi and Nasir Shah present the one and only Nadeem Abbas Lonewala performing live at Ishq Sufiana this October 19th. At the Rose Theatre, Brampton, an unforgettable night of Sufi magic. With Ustad Joji Ali Khan and the sensational Raghu joining the stage. Tickets are flying fast. VVIP, VIP and regular seats available now. Grab your tickets now. Call 647-712-7000, 416-993-5019 or 416-803-0999 for details. Ishq Sufiana. Feel the love. Live the music.
لے گیا سو لے گیا, جو رہ گیا سو رہ گیا. 40 سال پرانا سوڈی فرنیچر سدے کے لیے بند ہونے جا رہا ہے. $90 کا سنگل بیڈ, $100 کا ڈبل بیڈ, $100 کا یہ ڈبل بیڈ, $249 کا بنک بیڈ, $99 کی یہ گلاس کافی ٹیبل, $100 کی یہ بیوٹیفل ماڈرن کافی ٹیبل, $130 کی یہ کافی ٹیبل, $120 میں ٹی وی ٹرالی وتھ ورٹیکل اسٹوریج, $499 میں ماڈرن کوئن سائز بیڈ وتھ اسٹوریج اور ون نائٹ اسٹینڈ بالکل فری, $499 میں میڈ ان ملیشیا ڈائننگ ٹیبل سیٹ وتھ 6 چیئر سالڈ ووڈ میں, $599 میں ایکسٹینڈیبل ڈائننگ ٹیبل وتھ 6 چیئر, $1199 کا ہائی اینڈ لگژری سوفا سیٹ 6 سیٹر جس میں آپشن ہے پرنٹڈ چیئر کی اور نارمل چیئر کی, $1299 میں یہ ماڈرن کوئن سائز بیڈ روم سیٹ 8 پیس جس میں ہے ڈریسر, چیسٹ, دو نائٹ اسٹینڈ اور وتھ اسٹوریج. یہ سارا کا سارا 2 million+ کا برانڈ نیو فرنیچر کلوزنگ سیل डाउन पे है। आ जाओ फिर सारे सोडी फर्नीचर ब्रैम्पटन और इनको सपोर्ट करो, इनका साथ दो ताकि सारा फर्नीचर इनका सेल हो सके और आपको फायदा हो सके।
خوش آمدید تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 ایم ڈائل پر پروگرام ساز و آواز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد، اور جناب شاہ انٹرٹینمنٹ کے ناصر شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور عشق صوفیانہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں، ندیم عباس لونے والا صاحب اور راگنی اور بھی جو جی علی خان بھی جو ہیں، جو جی صاحب بھی وہ بھی آ رہے ہیں، تو ناصر شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، آئیے ان کو بلا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب ندیم عباس لونے والا، استاد جو جی علی خان اور راگنی پرفارم کریں گے اکتوبر 19 کو 7 بجے اور یہ روز تھیٹر میں ہونے جا رہا ہے۔ شاہ جی ویلکم ٹو دا پروگرام، کیسے ہیں آپ؟
جی عمر بھائی بہت شکریہ آپ کا اور ریڈیو پروگرام سننے کا، السلام علیکم۔
وعلیکم
السلام۔ آپ نے ابھی بھی کہا بھی اکتوبر 19،
جی
5 دن رہ گئے، کمنگ سنڈے کو یہ شو ہونے جا رہا ہے روز تھیٹر میں۔ وہ کہتے ہیں نا عمر بھائی کوئی بھی بزنس کامیاب کرنے کے لیے لوکیشن 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 چاہیے، تو یہ لوکیشن جو ہم نے اس طرح کی پک کی ہے، لوگ ترستے ہیں، دو سال کی ویٹنگ ہے یہاں، اور ہم نے وہ کافی دیر سے بک کرا رکھا تھا، تو پلان کر رکھا تھا کوئی اچھے سنگر ہوں گے تو ان کو لائیں گے ہم لوگ۔ یہ واقعی آپ کو یہ بہت اچھے سنگر سننے کو ملنے جا رہے ہیں، صرف آپ نے پہنچنا ہے، اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کو لے کے آئیے گا، یہ بہت ہی اچھا، میں گارنٹی کر رہا ہوں آن ایئر بھائی، اس سے اچھا شو اگر آپ نے واقعی میوزک کو سننا ہے تو اس سے اچھا شو آپ کو نہیں ملنا۔ یہ ہونے جا رہا ہے روز تھیٹر میں اکتوبر 19، جیسے میں نے پہلے کہا یہ کمنگ سنڈے، آپ پہنچیں ٹھیک 7 بجے ہم سٹارٹ کریں گے، 7 بجے سے لے کے شام تک یہ چلتا رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات اس میں، پہلے آپ یہ کہہ لیں راگنی جو ہے وہ انہوں نے پورے ورلڈ میں کوئی ایسی کنٹری نہیں جہاں پہ پرفارم نہیں کیا، ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا، پہلی دفعہ یہاں پہ پہنچ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ استاد جوجی علی خان صاحب پچھلے 400 سالوں سے ان کی فیملی میں یہ پرفارم کیا جا رہا ہے قوالی، اور قوالی بھی سننے کو ملے گی، فوک بھی سننے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ ندیم عباس لونے والا جو کہ اللہ دیتا لونے والے کے بیٹے ہیں اور ان کا بہت بڑا نام ہے، ان کا گانا بڑا مشہور ہوا تھا بسم اللہ کرا
جی،
تو یہ پہنچیں گے سارے کے سارے روز تھیٹر میں اکتوبر 19 کو، آپ نے پہنچنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات امر بھائی، ٹکٹس ہم نے بہت ریزنیبل رکھی ہے، اسٹارٹنگ فروم صرف اور صرف $29، انکلوڈ ٹیکس انکلوڈ پارکنگ، کوئی اس میں پارکنگ نہیں ہے، کیونکہ ڈاؤن ٹاؤن لوگ جاتے ہیں یہ سوچ کے وہ یار $20-25 پارکنگ دینی پڑے گی،
صحیح،
ایسا کچھ نہیں ہے، صرف آپ نے پہنچنا ہے اپنی فیملی کو لے کے، اور نان اسٹاپ انٹرٹینمنٹ آپ کو ملے گی روز تھیٹر اسٹارٹنگ فروم 29، پھر 59، وی آئی پی جو ٹکٹ ہے وہ صرف اور صرف 79، اور وی وی آئی پی ٹکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف $99۔
کیا بات،
کوئی بھی انفارمیشن چاہیے آپ وقار سید کو کال کریں 6477127000، 6477127000، جی امر بھائی
جی بالکل 6417127000، شاہ انٹرٹینمنٹ لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے عشق صوفیانہ، اور ندیم عباس لونے والا، استاد جوجی علی خان راگنی پرفارم کریں گی کمنگ سنڈے کو، اب تو 19 چھوڑ دیں آپ، سنڈے یاد رکھیں بس، اب سنڈے کو پرفارم کریں گے 7 بجے روز تھیٹر میں، اور ٹکٹ بائی کرنے کے لیے آپ روز تھیٹر کی ویب سائٹ جا سکتے ہیں اسٹارٹنگ فرام 29 اینڈ وی وی آئی پی از 99، اور بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 4167127000 اگر آپ نے کسی قسم کی بھی انفارمیشن لینی ہے۔ شاہ جی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل رہنے کا، یہ تھے ہمارے ساتھ ناصر شاہ صاحب اور عشق صوفیانہ جو ہے پروگرام لے کر آ رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں انہی کا، ندیم عباس لونے والے کا ایک گانا پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، شازیہ جی بھی اپنی ہیڈ لائنز لے کر آئیں گی، اور آج ہم نے جیسمین پرمار سے بھی آپ کی ملاقات کرانی ہے کہ دیکھتے ہیں ابھی آنے والے منتھ میں، اسی منتھ میں اینڈ میں بھی ایک اناؤنسمنٹ ہونی ہے بینک آف کینیڈا کی طرف سے، مارگیج کے معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کیا خبریں آ رہی ہیں مارگیج سے، اور اگر آپ بھی کسی قسم کی مارگیج دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہیں، کمرشل مارگیج دیکھنی ہے، ریزیڈینشیل مارگیج دیکھنی ہے، تو ہم جیسمین پرمار سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ مین وائل گانا سنتے ہیں اب ندیم عباس لونے والے کا، انجوائے کیجئے، پروگرام میں واپس آتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778۔
اچھا झुलत ढीखियां दिसोए वेखियां मिला कहां से ही सनु अजमा रब ही गवाह झोलिया मैं नहीं बेवफा झोलिया इन्ना ते दी अखियां दी सोए झोला ते दी अखियां दी सोए
WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Aagi hai Diwali, khushiyan manaun nu, pataka dot com to patake aun nu.
1 नवंबर नु आ रही है दिवाली तुसी भी फटाका.com से आओ बेस्ट क्वालिटी दे फटाके होलसेल प्राइस से ले जाओ ग्रोसरी स्टोर कन्वीनियंस स्टोर कनाडा दे विच किते भी अगर तुसी भी फटाकियां दे नाल अपना प्रॉफिट दुगना करना चाहंदे हो ते आज ही कॉल करो फटाका.com ते 416-828-6008
416-828-6008 मटके दी कुल्फी जो खावे रह जे दंग
क्यों आ गया ना मुझ पानी ता फिर तुसी भी बनाओ अपनिया खुशियां स्वीट मेल दे नाल जो तुहाडे स्वाद अते सेहत दोवां दा ख्याल रखदे ने
मुंह मिठा करा दे चन्न वे के खुशियां ने आईयां के खुशियां ने आईयां लेना लगिया स्वीट मेल ते खरीद लो मिठाइयां
इस दिवाली थोड़ा खाओ पर वधिया खाओ मिठाइयां दे नाल ना ड्राई फ्रूट्स दे गिफ्ट बॉक्सेस ले जाना ना भूलियो आज ही पहुंचो स्वीट महल इन रेक्सडेल 416-679-9191
हैप्पी दिवाली
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care.
ਲਾਉਡੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ GTA ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਡੋਰ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਡ ਸ਼ੁੱਧ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਗਿਫਟ ਬਾਸਕਿਟ, ਸਮੋਸਾਸ, ਬਰਫੀ, ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਡੋਰ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਓਨਲੀ ਐਟ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ, 1850 ਐਲਵਿਨ ਰੋਡ, ਇਨੋਟੋਬਿਕੋ। ਕਾਲ ਐਟ 416-213-1165।
ਵਿਲੇਜ ਟੇਸਟ ਪੂਰੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਕਾ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਹਲਾਲ ਸੁਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਕੜਾਹੀ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ ਮੇ ਬੇ ਇੰਤਹਾ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੀਸਟ ਇੰਜੋਏ ਕੀਜੀਏ ਵਿਲੇਜ ਟੇਸਟ ਪੇ। ਆਫਟਰ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਓਕਵੇਲ ਐਸ ਵੈਲ। ਵਿਲੇਜ ਟੇਸਟ, 9052323663। ਵਿਲੇਜ ਟੇਸਟ।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स। मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर, न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा। 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
ਅਕਾਲ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਲੂਬ,
ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਰਿਪੇਅਰ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਵਾਸ਼ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ,
ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਨਵੇਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਟਾਇਰ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਵਾਰੰਟੀ।
ਅਕਾਲ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਲੂਬ, 1776 ਮੇਅਰ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ, 905-565-1100।
Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior, popcorn ceiling ko remove karna, water damage, if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling pe hain, ko remove karke be dagh karenge. Texture style painting, which is the latest Italian style painting, ya wallpaper lagwana chahte hain to call kijiye Texture style painting ke liye Painters of GTA, 6472711974. मोहम्मद सलीम, 6472711974।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल ज्वेलर्स के असलम भाई को कॉल करें ना, एट 9057907879, दैट इज 9057907879।
पेठा लड्डू, बर्फी, जलेबी, कलाकंद, मटके दी कुल्फी, जो खावे रह जे दंग।
क्यों, आ गया ना मुझ पानी? ता फिर तुसी भी बनाओ अपनिया खुशियां स्वीट मेल दे नाल, जो तुहाडे स्वाद अते सेहत दोवां दा ख्याल रखदे ने।
मुंह मिठा करा दे चन वेख, खुशियां ने आईयां, के खुशियां ने आईयां, लेना लगियां स्वीट मेल ते, खरीद लो मिठाइयां, खरीद लो मिठाइयां।
इस दिवाली थोड़ा खाओ पर वधिया खाओ, मिठाइयां दे नाल ना ड्राई फ्रूट्स दे गिफ्ट बॉक्सेस ले जाना ना भूलियो। आज ही पहुंचो स्वीट महल इन रेक्सडेल, 416-679-9191।
हैप्पी दिवाली।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और जनाब छुट्टी मना लें सर, मना लें आप सब छुट्टियां मना लें और ड्राइव करें सेफ। और खाने पीने के लिए बाहर जा रहे हैं तो 2-4 रेस्टोरेंट्स का मैं आपको नाम दे देता हूं मजेदार किस्म का, फिर आप वहां पर गाड़ियां अपनी मोड़ लीजिएगा। अगर आप कढ़ाई 804 जाते हैं जनाब और साजो आवाज का रेफरेंस देते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल मजेदार कढ़ाई आपको खाने की मिलेगी, बारबेक्यू मिलेगा और इनका जो रेस्टोरेंट का एम्बियंस है ना, डेफिनेटली यू विल लव दैट एनवायरमेंट एज वेल। तो कढ़ाई 804 पे आपने जाना है कहां, 3604 मेजर मैकेंजी ड्राइव वेस्ट यूनिट 6 मेपल में। और इनका नंबर है 905-417-0804 कढ़ाई 804 का नंबर है। जाएं साजो आवाज का रेफरेंस दें और जनाब आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। अगर आपने बफे एंजॉय करना है तो आई डोंट नो, आज मंडे आई होप सो विलेज डेज खुला हो तो विलेज डेज जा सकते हैं 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा और इनकी दूसरी लोकेशन है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट ओकविल में। और जाएं वहां पर भी तो साजो आवाज का रेफरेंस दें। और अगर आपने कैटरिंग करवानी है तो आप फैसल चट्टा को कॉल कर सकते हैं 905-232-3663 जनाब मंडे का दिन है, हफ्ता शुरू हो गया है और मौसम भी कदरे बेहतर है और इस कदरे बेहतर में बहुत सारी मतलब वीकेंड में तो इतनी खबरें हैं, मुझे लगता है कि खबरों का ना कहते हैं कि होलसेल लगा है, इतनी खबरें थी वीकेंड से तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी खबर जो है वो मंडे तक बचेगी कौन सी नहीं बचेगी। और अभी भी आप समझ रहे हैं ना कि वजीर आला साहब का वो हो गया है खबर पख्तूनख्वा का जनाब, अभी ब्रेकिंग न्यूज उसमें भी बाकी है, अभी तो कहते हैं जी कोर्ट में चैलेंज करेंगी अपोजिशन जमातें। बहरहाल सारी खबरें लेकर आ गई हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में अपनी उबर में बैठ के शाजी मलिक साहब, आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहु, हम ठीक हैं। यानी मुझे बताओ ये आज चक्कर क्या हुआ है, तुम हर मंडे को काला जोड़ा पहन के आते हो हैं, काला चश्मा जचदा है जचदा, घोड़े मुखरे थे ऊपर से तुम काला चश्मा पहन लेते हो हैं, आज क्या चक्कर हुआ है कि आज जो है ना तो तुमने काले कपड़े पहने हैं ना काला चश्मा पहना है, चक्कर क्या है?
फ्राइडे पहन लिया था अगर आपको याद हो।
हाँ फ्राइडे को पहना था लेकिन मैंडे तुमने अब चेंज कर दिया है।
नहीं मैं न्यूज पे ही गया आज, मैंने कहा कि मैं अपने वतन पाकिस्तान पाक सर जमीन शाद बात, तो मैं ग्रीन आज प्रिफेयर किया कि मैं आज थोड़ा सा ग्रीन हो जाऊं।
हाँ।
जरूरत भी होती है ना कभी कभी,
हाँ।
मॉरल सपोर्ट देना पड़ता है।
अच्छा अच्छा क्योंकि आपकी ड्रेक डालेंगे ना,
ड्रेक डालेंगे, बिल्कुल ड्रेक डालेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब देखें क्या बल्ले बल्ले दुनिया के, वो सबको भूल जाएंगे वो,
हाँ।
लेकिन शहबाज शरीफ साहब का नाम
और आसिम करी भूल रहे हैं,
कभी नहीं भूलते,
कहते हैं आज आप बोल
तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे
पास
तकरीर रोक कर
है, देखो जरा
मतलब वो कहते हैं ना कि नंबर वन मुल्क
दुश्मनों के दिल पे तो लौट गए,
अपनी तकरीर रोकता है और कहते हैं जी
तुम बात करो यार
से समथिंग,
तुम बात करो।
देखिए कुछ भी हो, देखिए आप जैसे भी कह लें चाहे 47 कह लें 45 कह लें वो एक तरफ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि
मोहब्बत देखें आप,
जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे
अल्लाह इज्जत दे,
हाँ वही मसला है, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे तो मैं और आप क्या कर सकते हैं,
हाँ
और डोनाल्ड ट्रंप साहब जिसको इज्जत दे रही है तो उस पर भी हम आप क्या कर सकते हैं,
बड़े पिड्डा बड़ा सरपंच
तो बहरहाल अच्छा रहा वैसे तो आज का मुझे करके उनकी मैं सुन रहा था,
अल्लाह करे इन बेचारों की
बहुत ज्यादा उन्होंने अंग्रेजी भी बोली आज माशाल्लाह,
ओ अंग्रेजी इतनी अच्छी कहते हैं बोली,
मतलब
ओ माय गॉड
एक्सपीरियंस बोल रहा था ना।
अच्छा 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 अच्छा, आज तो इतनी अंग्रेजी बोली और इतने जज्बे से बोली कि वाह क्या बात है। मैंने कहा आज खुश तो बहुत हुए होंगे, नाराज तो बहुत हुए होंगे तुम।
नहीं, दुनिया अब बहुत डिफरेंट चल रही है पॉलिटिक्स इस वक्त मिडिल ईस्ट की और साउथ एशिया की। इतनी मतलब कहने में डे होता है ना, डे टू डे बेसिस पर चेंजेस हो रही है। डे टू डे अनीता आनंद सारवा जो है वो पहुंच गई है अपने इंडिया के लिए, कहते हैं ना कि रीस्टार्ट करने के लिए अपने मामला।
इसी तरह मनिंदर सिद्धू की भी बातें हुई हैं,
उनकी भी बातें हुई हैं,
और पीयूष गोयल
अफगानिस्तान के जो है मुत्तकी साहब वो इंडिया होकर गए, तो ये मामला चल रहे हैं,
खींचनी पक रही है
चल रहे हैं। फिर अमेरिका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब आपके प्यूटन साहब को धमकी दे बैठे हैं,
दे बैठे हैं, लेकिन जी साढ़े तो पीछे खलोता है ना, फिर सानू कोई डर नहीं।
ये सही है, सानू कोई डर नहीं है,
सानू कोई नहीं, साड़ी गल हो गई है,
तो गल
साड़ी गल हो गई है। तेनू मैं कितनी दफा दसिया साड़ी गल हो गई है वड्डे सरपंच दे नाल, गल हो गई
है
साड़ी, तो वो हमारे पीछे खड़ा है। और ये जैसे पीछे खड़ा है ना, ये माजद भाई की तरह का पीछे नहीं खड़ा है, ये नजर ही नहीं आ रहे। मुझे हमेशा कहते थे मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ,
नहीं माजद भाई ऑलवेज
है, हाँ नहीं माजद भाई तो नजर ही नहीं आते, ये सही मानों में पीछे खड़ा है।
देख रहे हैं इनके भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, प्योर बिजनेसमैन है,
हाँ हाँ हाँ,
और किसी वक्त भी 9-11 हो जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब ढूंढते ही रह जाएंगे।
हाँ,
बंदा तो अभी यहीं का इतना लंबा चौड़ा सा,
लेकिन अभी उनका इंटरेस्ट है ना,
अभी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है मुझे,
इंटरेस्ट अभी उनका चल रहा है। जब तक अमरीका का इंटरेस्ट चलेगा वो आपके आले द्वारे नजर आएंगे, जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फिर वो 9-11 हो जाएंगे। ये जैसे आपकी है ना 804 खड़ाई, वैसे वो भी 9-11।
No comment.
वो एक खोलनी पड़ेगी,
नो कॉमेंट।
अगर तुम एक खोलो वैसे कड़ाई ना, 9-11 कड़ाई,
नो नो
खोलो खोलो,
नो फूड बिजनेस, नो फूड बिजनेस।
अच्छा अच्छा चलो, कोई कपड़ों का कारोबार खोलो, उस कपड़े की दुकान का नाम हो 9-11,
मतलब कुछ भी 9-11 कर लो।
अच्छा गाड़ी का नंबर ही तुम 9-11
नंबर प्लेट ले लेते,
हाँ नंबर प्लेट।
मैं ऑन्टेरियो सर्विस में अप्लाई करता हूँ,
को बोलो 9-11
एबीसी 9-11,
हाँ एबीसी 9-11 मुझे चाहिए।
ये नंबर प्लेट अच्छी रहे,
हाँ अच्छी है ना,
ये मैं कर सकता,
हाँ ये कर सकते हैं।
गाड़ी की नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराता हूँ, और एबीसी 9-11
बिल्कुल बिल्कुल।
चलो ये
कुछ होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में, 9-11 का कुछ लेना देना होना चाहिए।
चलें जनाब खबरों की तरफ चलते हैं, और गर्मा गर्म खबरें लेकर हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच गई शाजिया मलिक साहिबा, और ये खबरें आप तक पहुंचाने के लिए मैं मैसेज दूंगा जैस्मीन परमार का, की स्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की प्रिंसिपल ब्रोकर हैं, आज मसरूफ है तो मैं उनका पैगाम मैं दे देता हूं। अगर आपने कमर्शियल मॉर्गेज करानी है, रेजिडेंशियल मॉर्गेज करानी है, प्राइवेट मॉर्गेज करानी है, आपके रीफाइनेंस कराना है, रिन्यूअल अगर आपका आ रहा है, तो आपने वन एंड ओनली कॉल करना है जैस्मीन परमार को, प्रिंसिपल ब्रोकर हैं 6479235659 उनका नंबर है, और इनके दो लोकेशन है, एक मिसिसागा में इनकी लोकेशन है और एक लोकेशन इनकी ब्रैम्पटन में भी है। इसके अलावा हमारी न्यूज के सेगमेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं बीवर टेल। अगर आप कनाडा के अलावा कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट रोमिंग की जरूरत होगी, यूजुअली आप महंगा डाटा बहुत ज्यादा, आपको पता है रोमिंग डाटा बहुत ही महंगा है, बहुत महंगा है, तो आपको बीवर टेल अगर आप जाते हैं, इनकी वेबसाइट है beavertel.com beavertel.com इनकी वेबसाइट है, और इनका नंबर है 416-243-9836 416-243-9836 इनका नंबर है, और बहुत ही मुनासिब दाम है, बल्कि कम पैसों में आपका जो है इंटरनेट का मसला, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से आपका हल हो जाएगा। चलिए जनाब खबरों की तरफ बढ़ते हैं,
खबरों की तरफ बढ़ते हैं जनाब, और दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह जी के पास जाएं अगर आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है, और आप उनसे बहुत अच्छी जो है वो मॉर्गेज की नहीं आपको इंश्योरेंस की सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है जी। मॉर्गेज के लिए नहीं जाना उनके पास, उनके पास आपको जो है वो इंश्योरेंस की सर्विसेज के लिए चाहिए। अच्छा, फिर आप अगर आपके दांत खराब हो गए तो आप डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जाएं। डॉक्टर नाजिया रहमान जो हैं वो आपको जो है बहुत अच्छी दांतों की सर्विसेज देती हैं, और वो कहती हैं जी कि मेरे तीन अब डेंटिस्ट्री क्लिनिक्स हैं, आप कहीं पर भी आ सकते हैं, दो ब्रैम्पटन में, एक मिसिसागा में, तो उसमें आप जो है वो उनके पास जाके और कोई भी सुविधाएं ले सकते हैं, ठीक है जनाब। इसके साथ साथ अगर आपको कोई ज्वेलरी अच्छी लेनी है तो आप जा सकते हैं हमारे असलम भाई के पास। असलम भाई जो है वो कहते हैं कि जी आपके घर का कोई भी ओकेजन है, कोई शादी है, ब्याह है, अकीका है, तो आप उनके पास 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव ब्रैम्पटन में जाएं और आप अच्छी जो है गोल्ड की ज्वेलरी ले सकते हैं। ट्रक आप चाहते हैं हमारा चलता रहे तो क्विक ट्रक ल्यूब के पास जाएं। QTL जो है वो कहते हैं हम ऑथेंटिक ऑयल्स डालते हैं आपके ट्रक में, तो इसलिए आपका ट्रक चलता रहता है। ठीक है जी, चलो जी अब हम चलते हैं अपना जो न्यूज है उसकी तरफ। कड़ी साहब जो है वो आज बड़े खुश हुए हैं, ये जो डील हुई है वहां पे शर्म अल शेख में इजिप्ट में वो पहुंचे हुए हैं, ये जो समिट फॉर पीस जो है ये जो हो रहा है तो उसके लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। ये आपको पता ही है कि गाजा के अंदर सीज फायर जो है वो हुआ है वहां पे, तो उसके बारे में ट्रंप कर्णी साहब ने कहा कि इट्स अ मोमेंट ऑफ प्रोफाउंड रिलीफ एंड आई अर्ज बोथ साइड्स टू अपहोल्ड द डील, क्योंकि आपको पता ही है इससे पहले भी दो दफा डील आए थे और इसराइल उससे पीछे हट गया था, तो उसकी वजह से जो है उन्होंने कहा कि भाई अब आप जो है दोनों इस डील के ऊपर आपको चलना चाहिए और दोनों जो है पैलेस्टीनियंस और इसराइलीज जो है इकट्ठे रहे। इसके साथ साथ जो है हॉस्टेज की भी डील जो हुई है जो रिलीज हुए तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ी खुशी का इजहार करता हूं, लेकिन इसराइल ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है कोई भी रोल। वो कहते हैं जी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का हम कोई भी रोल यहां पर नहीं जाते हैं। हेड ऑफ कैनेडाज ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री जो है उसने वार्न किया है आज कैनेडा को और उन्होंने कहा जी कि ये आप टैरिफ्स जो है चाइनीज ईवीज के ऊपर आप मत लगाए, और वो कहते हैं कि ये जो है अंडरमाइन करेगा जो चाइनीज ईवी का सेक्टर है और ये रिवॉर्ड करेगा बेजिंग को और हमारी डोमेस्टिक उसके ऊपर बहुत असर इसका पड़ेगा। फ्लाविओ वॉल्फ जो है उन्होंने प्रीमियर जो है वैब कीनू और स्कॉट मो जिन्होंने कहा था कि चूंकि हमारे कैनोला के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ चाइना ने लगा दिए है तो आप भी जरा चाइना के जो ईवीज है उसके ऊपर खत्म करें, तो उन्होंने टैरिफ खत्म करें, तो इन्होंने कहा है ये जो वॉब साहब है वो कह रहे हैं कि नहीं हम टीम कनाडा के लिए काम कर रहे हैं, चाइनीज एनवॉय उनके लिए नहीं काम कर रहे हैं। अब उन्होंने इसका जिक्र क्यों किया है, उसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि चाइनीज एम्बेसडर जो है उन्होंने कहा था कि अगर कनेडियन जो है हमारे चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर ईवीज के ऊपर यानी कि अगर टैरिफ निकाल देंगे तो हम भी कनेडियन प्रोडक्ट्स पे से निकाल देंगे। ये इनके बीच में जो चाइनीज ऑटोमेकर्स जो है इनके और कनाडा के बीच में लड़ाई 2018 से चल रही है जब माइकल स्पैवर और माइकल कॉवरिक जो है उनको उन्होंने पकड़ लिया था और फिर उसके बाद ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे कनाडा चाइना के बीच में। कैनेडियन इकोनॉमिस्ट जो है पीटर हुविट जो है उन्होंने जी जीता है नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स और उन्होंने इसको शेयर किया है जोएल मॉकेर और फिलिप एगियन के साथ और ये इनोवेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इन्होंने काम किया है। ये 79 इयर्स इनकी एज है और ये जो है इन्होंने मैथमेटिकल मॉडल्स यूज किए हैं फॉर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एज न्यू इनोवेशंस जिसको के रिप्लेस इन्होंने जो कहते हैं कर सकते हैं कि जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उसके लिए। इनकी डिग्रीज जो है वो मगिल और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से हैं और इस वक्त अमरीका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में ये टीच करते हैं। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट की में जिनी जनाब बड़ी जबरदस्त चेंज आई है, वही जो सेंटा क्लॉज वाले कपड़े इन्होंने पहने होते थे अब वो सारे वो ट्रेडिशनल रेड एंड व्हाइट वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं और अब इन्होंने ब्लैक जो है ड्रेसेस हैं उनके ऊपर रेड बड़ी खूबसूरत लाइंस हैं और इसके अलावा जो शर्ट नीचे से नजर आ रही है व्हाइट उसका कॉलर है। चीफ जस्टिस रिचर्ड वैगनर ने कहा कि ये रिफ्लेक्ट करती है कोर्ट की डिग्निटी ओपननेस और एक्सेसिबिलिटी और ये जो पुराने वाले रोब्स जो थे ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 1875 में और वो कहते हैं जी अब हम इनको ये ओल्ड ब्रिटिश जुडिशियल ट्रेडिशन इसको खत्म करके अब हम मॉडर्न आउटलुक जो है हमारा ड्रेस अब शो करेगा। ये जो गाजा की डील हुई है इसके अंदर आज बड़ी खुशियां मनाई गई हैं और 20 जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ा गया है गाजा में एंड हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जो है उनको भी फ्री किया गया है। ये जो 2 साल से वॉर चल रही थी हमास जो है उसने कहा है कि वो जो बॉडीज भी हैं ऑफ चार डिसीज इसराइली कैप्टिव्स वो भी ये वापस कर देंगे। इसराइल ने आज कन्फर्म किया कि उसने 1900 पैलेस्टीनियंस को जो पकड़ा हुआ था प्रिजनर्स को उनको उन्होंने छोड़ा है। नतन्याहू ने पार्लियामेंट में कहा कि वो ही इज कमिटेड फॉर पीस। इसके ऊपर ट्रंप साहब ने भी कहा है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं पार्लियामेंट को कि नतन्याहू को माफ कर दें और इसमें यह अब लग रहा है कि शायद वॉर जो है वो खत्म रहेगी और लेकिन इसके अंदर अभी भी वो क्वेश्चंस जो उन्होंने रेज किए थे नतन्याहू ने कि भाई हमास जो है उसको डिसआर्म किया जाए और गाजा का फ्यूचर गवर्नेंस कौन करेगा, तो आज जो समिट भी चल रहा था उसके अंदर गाजा की रिकंस्ट्रक्शन और गवर्नेंस के ऊपर बात की गई है। क्राउड्स ने आज सेलिब्रेट किया गाजा वेस्ट बैंक तेल अवीव में जब फैमिलीज रीयूनाइट हुई अपने लोगों के साथ। ट्रंप साहब जो है वो खासतौर पर ट्रेवल करके पहले इसराइल गए थे और वहां पर जो उनकी नेसेंट है जो उनकी पार्लियामेंट है उससे उन्होंने जो है वो एड्रेस किया था और फिर उसके बाद वो इजिप्ट में शर्म अल शेख में आ गए थे जहां पे ग्लोबल लीडर्स जो है वो जमा हुए हैं। उन्होंने जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट एलसीसी उनके साथ को चेयर किया इसको और तकरीबन 24 कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ द स्टेट और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो यहां पे जो है वो आज आए हुए थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। लेकिन नतन्याहू साहब को बुलाया गया था वो यहां पे नहीं थे। उन्होंने कहा जी कि मेरी ज्यूइश हॉलीडे है तो मैं आई हैव टू स्टे इन माई ओन कंट्री। ट्रंप साहब जो है जी उन्होंने बड़ा हेल किया है ये गाजा का जो पीस प्लान है और इसको बड़ा हिस्टोरिक उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा जी कि इट हैज एंडेड ब्लड शेड और उन्होंने अब प्रॉमिस किया है स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट। उन्होंने बड़ा प्रेज किया है पाकिस्तान को और उन्होंने फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर साहब उनको कहा है कि ही इज माई फेवरेट और फिर उसके बाद उन्होंने फौरन ही वेलकम किया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो पीछे ही खड़े हुए थे उनके कि आप आके बात करें और इससे पहले कि उसको उनको बुलाते उन्होंने कतर और इजिप्ट की जो मीडिएशन एफर्ट्स थी उनकी बहुत तारीफ की। इससे पहले जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी बात कर रहे थे तो उन्होंने सारे का सारा क्रेडिट जो है वो ट्रंप साहब को दिया इस वॉर को रोकने के लिए। इसके अलावा उन्होंने तारीफ की कतर और तुर्की के रोल के लिए भी और उन्होंने कहा जी कि यह हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। शहबाज शरीफ साहब को जब बुलाया गया तो फिर उन्होंने भी ट्रंप साहब की जम के तारीफ की। उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब इज मैन ऑफ पीस। इससे पहले भी वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने 7 वॉर्स रोकी हैं इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान की वॉर और ये जो है अब 8वीं है जो गाजा की इन्होंने वॉर रोकी है तो एज अ रिजल्ट हम इनको फिर से जो है रिकग्नाइज करते हैं और कहते हैं नॉमिनेट करते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए एक दफा फिर। तो ये जो सेंटेंस था इसको आज बड़े दुनिया में तकलीफ से देखा गया। ये जो ट्रंप साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है मेरा फेवरेट है तो वो कहते हैं जी आज वो तो नहीं है लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के तो मैं उनको बुलाता हूं बात करने के लिए। ट्रंप ने एक्नॉलेज किया है जी कि ये जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में और उन्होंने कहा जी कि ये जो मेरा मिडल ईस्ट का ट्रिप है और ये जो सारा कुछ चल रहा है यहां पे ये जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मैं फिर इस तरफ भी जो है वो ध्यान दूंगा। उन्होंने कहा जी कि मैंने बहुत सारी वॉर्स जो है वो खत्म कराई हैं। एयरफोर्स वन में जब चढ़ रहे थे और जा रहे थे ये इसराइल की तरफ और फिर इन्होंने इजिप्ट जाना था उस वक्त ये सारी बातचीत कर रहे थे। एक दफा उन्होंने फिर से कहा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रोका था मैंने 7 और वॉर्स रोकी और ये 8वीं है जो मैं गाजा की मैं रोक रहा हूं। विद इन 24 आवर्स मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रोकी। मैंने उनको कहा कि मैं ट्रेड के टैरिफ तुम्हारे ऊपर बड़े लगा दूंगा तो उनको जब मैंने ये कहा तो उन्होंने फिर रोका और उन्होंने कहा लेकिन ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं खासतौर पर जो गाजा का मैंने सीज फायर कराया ये मैं किसी नोबेल प्राइज के लिए नहीं कर रहा लेकिन मुझे पता है कि आई हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स जिसका कि जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने भी किया था। उन्होंने कहा जी कि 2025 में ये ग्रेट अकम्पलिशमेंट्स हैं और इसके लिए स्पेशल रिकग्निशन तो मिलता ही है। तो उनसे पूछा गया कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने तो आपको नॉमिनेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो 2024 के लिए उन्होंने नॉमिनेशन की हैं 2025 के लिए नहीं की हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो वॉर्स थी दुनिया में कोई किसी मुल्क में 31 किसी मुल्क में 32 और किसी मुल्क में 37 ईयर से चल रही थी लाखों लोग जो थे उसमें मर गए थे और मैंने एक दिन में ये सारी वॉर्स जो हैं बंद कराई हैं और अभी 2025 में भी बहुत कुछ हो रहा है एंड इट्स ग्रेट कि मैं ये सारी वॉर्स रोकने के लिए मैं कामयाब हुआ हूं। टॉरेंशियल फ्लडिंग जो है वो सेंट्रल और साउथ वेस्ट मैक्सिको में चल रहा है और मीडिया के मुताबिक 48 लोगों की डेथ्स हुई हैं तकरीबन 5 स्टेट्स के अंदर वेराक्रूज पुबला हिदलागो कुरेतारो सान लुई पोतोसी। तो बहुत ज्यादा ये जो है ट्रॉपिकल जो है स्टॉर्म्स यहां पे आ गए थे उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स और फ्लैट्स फ्लड्स आए थे। बहुत सारे जो सिटीजन हैं अभी भी मिसिंग हैं। 320,000 के पास पावर नहीं है। 16,000 होम्स जो है वो बुरे तरीके से डैमेज हुए हैं। प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेन बॉम जो है उन्होंने कहा कि हमने मिलिट्री को डिप्लॉय किया है फॉर रेस्क्यू वर्क और हम हर किसी की हेल्प करेंगे। जो पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर आ रहे थे वो शो कर रहे थे कि सोल्जर्स जो है वो रेजिडेंट्स को रैफ्ट्स में बिठा बिठा के इवैक्यूएट कर रहे हैं और जो है वो जो बिल्कुल उनके वेस्ट तक जो पानी आया हुआ था फ्लड वाटर उसमें से वेड करके लोगों को बचा रहे थे। चाइना ने आज एक्यूज किया है ट्रंप साहब की हिपोक्रेसी के लिए ओवर न्यू 100% टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स और उन्होंने डिफेंड किया है अपने खुद के जो कर्ब्स हैं ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उन्होंने कहा जी कि हम सबको रिफ्रेन करना चाहिए काउंटर मेजर से, और अभी तक उन्होंने किया भी था। चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने कहा कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ऑन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स, ये इन रिस्पांस टू यूएस एक्शंस हैं जब से हमारी बातचीत मैड्रिड के अंदर शुरू हुई थी। उन्होंने कहा जी कि ये टैरिफ वॉर जो है, ये बेशक ये चलाते रहे, हम इससे नहीं डरते हैं। उन्होंने बहुत डिनाउंस किया ट्रंप साहब को कि ये टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स है। उन्होंने कहा जी कि यूएस जो ब्लैकलिस्ट कर रही है चाइनीज कंपनीज को, न्यू पोर्ट फीस लगा रही है चाइनीज लिंक शिप्स के ऊपर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी सिलसिले में हम रेयर अर्थ्स के ऊपर अब लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि रेयर अर्थ्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, और यही जो है मेन फ्लैश पॉइंट है दोनों के बीच में। चाइना जो है वो डोमिनेट करता है ग्लोबल सप्लाई और के ऊपर, और इसकी जो है रेयर अर्थ्स की, और जो है अब वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करता जा रहा है ये जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर। तो वो कहते हैं जी हम डरते वरते नहीं है, तो जो आपको करना है आप कर सकते हैं। वीकेंड के ऊपर आपने सुना ही होगा कि बहुत ही हैवी क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रही, जिसमें के सैकड़ों ही लोगों की डेथ हुई थी, और पाकिस्तान मिलिट्री जो है उसने कहा कि हमने 200 अफगान फाइटर्स जो है उनको मारा है। अफगानिस्तान इसको नहीं मानता। भरल जी, अफगानिस्तान कहता है कि हमने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे हैं, पाकिस्तान कहता है कि सिर्फ इन्होंने 20 मारे हैं। भरल जी वो कहते हैं जी कि हमने पाकिस्तान का जो बहुत सारा असला था और बहुत सारा बॉर्डर पोस्ट था उनके ऊपर कब्जा किया है। पाकिस्तान कहता है कि हमने उनके जो है तकरीबन 19 अफगान पोजीशंस जो हैं उनके ऊपर किया, और उन्होंने सीज किए हैं 3 पोस्ट इन कुनार हेलमेट के अंदर। तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये तस्वीरें जो दिखा रहा था उसमें देखा जा रहा था कि तालिबान की पोस्ट जो है उनको उनपे आग लगी हुई है, और जो इससे पहले जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके